आज का रात्रि क्लास है 5 जनवरी 1966। ये ग्वालियर गांव भी अच्छा है, जहाँ विश्व किशोर जाते हैं। क्या नाम है? किसी भाई ने कहा राजकोट। राजकोट भी अच्छा है सर्विस के लिए। बाबा ने मुरलियों में राजकोट की क्या खासियत बताई है? गांधी मरा, राजकोट में जाकर कोई साहूकार कांग्रेसी के यहाँ जन्म लिया। बात हद की भी है, बेहद की भी है। बेहद में राजकोट राजाओं के किले को कहा जाता है। बेहद में गांधी कौन है? हैं? जो गांधी कहता था स्वर्ग बनाएंगे, राम राज्य लाएंगे, और बीच में ही चला गया। राम राज्य तो आया नहीं, और ही रावण राज्य आ गया। बेहद का गांधी के लिए भी ये बातें लागू होती हैं। बेहद के गांधी ने शरीर छोड़ा, तो रुद्रमाला में जो राजाएं हैं, राजा बनने की क्वालिटी की आत्माएं हैं, उनमें से कोई ज्ञान रत्नों के साहूकार के यहाँ जाकर के जन्म लिया। तो बोला राजकोट भी अच्छा है सर्विस के लिए। बहुत गर्मी है, जहाँ जहाँ कुछ ठंडाई है, तहाँ तहाँ से निकल फिर नया नया सेंटर खुलने है। तो पादरी वगैरह होते हैं ना, उनको भी अगर समझाया जाए, रास्ता बताया जाए कि तुम उस क्राइस्ट को याद करते हो, उसका दूसरा भी नाम क्या है, किसी ने कहा ईसा, ईशु, जरूर वो भी तो जिसका बच्चा है, तो वर्षा तो उनसे मिलेगा, कोई क्राइस्ट से नहीं मिलेगा। तो क्यों न बाप को याद करना है? उनका भी तो वो बाप है ना। क्योंकि अगर लिबरेट भी करेगा तो वो बाप करेगा ना। अभी तो शैतानों का राज्य चल रहा है, लिबरेट करेगा तो क्यों उनको याद करें? उनसे बरसा लेवे। तो कई कई पॉइंट से, सभी पॉइंट से समय में याद नहीं पड़ती है, मिस हो जाती है। तो नॉलेज किसको भी दिया जा सकता है, क्योंकि मुसलमान भी तो अल्लाह को बाप कहेंगे ना। सभी गॉड को फादर तो जरूर कहेंगे, क्योंकि उनका नाम ही है गॉड फादर। तो जो फादर है तो सर्वव्यापी तो हो ही नहीं सकता है। सिर्फ अगर गॉड फादर कोई कहे, ये भी कहे गॉड फादर, वो भी कहे गॉड फादर अंग्रेजी में, तो फादर तो हुआ ना। अच्छा, फादर तो नई दुनिया ही स्थापन करते हैं, नया घर ही बनाते हैं ना। क्योंकि ये दुनिया तो पुरानी है, तो फादर को याद करने से फादर से इनहेरिटेंस मिलेगा। और समझा सकते हैं कि फादर से तो दो इनहेरिटेंस मिल सकती हैं। फादर को याद करने से फादर के पास जाकर पहुंचेंगे, जब सभी वहां जाकर के पहुंचेंगे, क्योंकि जाएंगे तो सभी ना, कोई एक थोड़े ही जाएंगे, क्योंकि लिबरेट आ करके वो ही करते हैं, तो सबको करते हैं। हाँ, उनको अगर कोई याद करेगा तो फिर भी उनको सबको लिबरेट करना है। परंतु जो उनको याद करेगा उनसे बरसा पा सकता है। तो बाप का परिचय देने से, ये जो कहते हैं भाई अपन को ये मानते हैं फलाना मानते हैं, तो बात निकल जाती है। अगर कोई युक्ति से समझाने वाला हो तो हाँ ये समझा सकते हैं। ये नॉलेज तुमको कहाँ से मिलती है, तो उनको बताया जा सकता है कि एडम द्वारा ही तो वो नॉलेज देंगी ना। नहीं तो किस द्वारा नॉलेज देंगे? एडम ही तो सबसे पुराना है, जबकि उसको वर्षा देना है तो जरूर कोई द्वारा तो देंगे ना। क्योंकि इनकॉर्पोरियल है, दिखलाया भी जाता है ब्रह्मा द्वारा। विष्णु शंकर की तो बात ही नहीं है, तब किसके द्वारा? क्योंकि विष्णु में तो राधे कृष्ण भी आ जाते हैं, ऐसे थोड़े ही है और कोई उठाएंगे, रामचंद्र को उठाएंगे। तो नालिश देने की बड़ी सहज है, सिर्फ नालिश देने में बड़ी युक्तियां हों, अच्छी युक्तियां हों, जिसमें युक्ति हो और खजाने का भंडारा भरा हो, तो वो देने बगैर कोई रह नहीं सकते हैं। उनको देने बगैर सुख नहीं आएगा, न है वो बात ही दूसरी है। जिनके पास नहीं है, परंतु जिनके पास भंडारा भरपूर है, वो तो जरूर टिकलू टिकलू करते रहेंगे, रास्ता ढूंढते रहेंगे कि हम कहां जाकर के सर्विस करें, नाम वाला हो जाए तो सर्विस रहती है ना, बहुत आती है, सर्विस का चांस मिलता है। तो ऐसी ऐसी जगह में प्रदर्शनी में या ये जहां भी ऐसे अगर दुकान भी निकाला है तो बता सकते हैं। पांच एक 66 की वाणी का दूसरा पेज, नया गांव है, अच्छा गांव है, पीछे जाकर कोई न कोई भगवान का लाल निकल आएगा। भगवान के लाल तो तुम ब्राह्मण हो, और तो कोई लाल है ही नहीं। लाल कहा जाता है बच्चे को, तो कोई न कोई लाल निकल आएंगे। आप ही जो सर्विस करते हैं उसको देवता कहा जाता है। कहने से जो करते हैं उनको मनुष्य कहा जाता है, और कहने से भी सर्विस न करे तो बाबा समझाते हैं। जिसको कहने से काम करते हैं तो मनुष्य है, और कहने से भी जो काम न करे फिर उनको और थर्ड क्लास में रखा जाए। बना कोई भगवान को याद करते हैं किसी भी प्रकार से, भक्ति के अनेक प्रकार हैं, ज्ञान का तो एक ही प्रकार है। रामानुसार ये अनेक प्रकार रखे हुए हैं, सो भी तुम समझते हो कि भक्ति कहां से कहां तक जरूर चलनी है, और दिन प्रतिदिन भक्ति तमो प्रधान होनी है, और दुनिया भी दिन प्रतिदिन तमो प्रधान होनी है, पुरानी होनी है, दिन प्रतिदिन जाती दुख बढ़ना है, क्योंकि नीचे उतरते रहते हैं, बाद में इस घोर अंधियारे में जाते रहते हैं, तो इसमें तो दुखी दुख होंगी ना। इस दुख की दुनिया में अनेक मते हैं और सीमत तो गई हुई है, सिर्फ बिचारे मुझ गए हैं कि सीमत किसकी। तो बच्चों को दादा की पहचान देनी है, कौन दादा है? अरे बाप दादा भूल गए, बाप के साथ दादा। मुरली की शुरुआत कहाँ से हुई थी है? राजकोट से, जहाँ से दादा को वर्षा मिलना है। ब्रह्मा दादा को वर्षा कहाँ से मिलना है? रुद्रमाला से मिलना है या कोई इस्लामी बौद्ध आदि की माला से मिलना है? तो बच्चों को दादा की पहचान देनी है, फिर मात पिता की पहचान भी देनी है। मात पिता तो क्या, बाप की ही पहचान देनी है। देखो ये कोई कोई तो इन पार्टियों को भी समझाते हैं, उनकी समझ में आता है, और कोई कोई के समझ में नहीं आएगा। ऐसे नहीं कि साफ समझने की कोशिश में रहेंगे, या ये दिखलाएंगे कि हम समझना चाहते हैं, कोई तो बिल्कुल ही नहीं दिखलाएंगे। जानते ही नहीं है, कहते हैं हमको फुर्सत नहीं है। म्यूजिक बजाए, मीठे मीठे से खेल दे बच्चे। ब्राह्मण कुलभूषण स्वदर्शन चक्रधारे, देखो टाइटल कितने अच्छे देते हैं। अभी सर्वोत्तम ब्राह्मण कुलभूषण, पीछे स्वदर्शन चक्रधारे, क्या मतलब? अभी मने कभी ही ब्राह्मण कुलभूषण कब? ब्राह्मण किससे बनते हैं? है? अरे ब्रह्मा से ब्राह्मण बनते हैं। तो जब तक ब्रह्मा बाबा जीवित रहे तो ब्राह्मण कुलभूषण, फिर पीछे स्वदर्शन चक्रधारी, पीछे माने कब से है? ब्रह्मा बाबा के शरीर छोड़ने के बाद वो ब्राह्मण स्वदर्शन चक्रधारी बनते हैं। उनकी आत्मा का 84 का चक्र का दर्शन बुद्धि में घूमने लगता है। तो हरेक अपन को समझते तो है ना कि हम ब्राह्मण कुलभूषण हैं, या आगे बढ़कर के क्या बन गए? स्वदर्शन चक्रधारी भी बने हैं, ये भी समझते हैं कि हम शिव बाबा के पोत्रे या पोत्री हैं। शिव बाबा को याद करने से शिव बाबा से वर्षा ले रहे हैं। दाढ़े की मत पतलने से दाढ़े का वर्षा मिल रहा है। कौन हुआ दादे? है शिव बाबा। कब हुआ? अरे यज्ञ के आदि में दादे हुआ ना। कौन, किसके द्वारा? है प्रजापिता के द्वारा। तो बोला दाढ़े की मत पर चल करके दाढ़े से वर्षा मिल रहा है। ये सब ख्याल तो रहना है ना। पहले दाढ़े होता है या बाप होता है? बाप दादे है? पहले तो दादे, बाद में बाप, और उसके बाद दादा। तो दादे की मत पर चलने से दादे से वर्षा मिल रहा है। ये सब बातें ख्याल में रहना चाहिए। क्या वर्षा मिल रहा है, किसको मिल रहा है? ब्रह्मा की औलाद ब्राह्मणों को स्वदर्शन चक्रधारी का वर्षा मिल रहा है। वर्षा कोई छोटा नहीं है, बहुत भारी वर्षा है। 21 पीढ़ी और सदा सुख का वर्षा। और इसमें कितना पुरुषार्थ चाहिए, और है भी बहुत सहज, क्योंकि बाप कहते हैं मैं गरीबों को अपना ये वर्षा देता हूँ। ये बहुत सहज कर दिया है, तो सहज होने से फ्री हो जाते। तो बच्चों को बहुत पुरुषार्थ करना चाहिए। ऐसे पुरुषार्थी बच्चों प्रति याद प्यार और गुड नाइट। अगला प्रातः क्लास है 6 जनवरी 1966 गुरुवार। रिकॉर्ड चला है ओम नमो शिवाय। जहाँ जिसका जन्म होता है वहाँ ही उसका नाम ज्यादा होता है। तो भारत में ये शिव है, इसका गायन तो बहुत है, क्योंकि शिव की जयंती भारत में ही है। और शिव बाबा ये आकर के फिर बच्चों को ये पतित से पावन बनाते हैं। ये मनुष्य जो पतित हैं, उनको पावन मनुष्य बनाते हैं। परंतु पावन मनुष्य को किस नाम से बताएं? ये अभी के मनुष्य तो पतित हैं। मनुष्य कहते ही रहते हैं पतित पावन आओ, पतित है तभी तो बुलाते हैं। अभी मनुष्यों को और कोई टाइटल मिलना चाहिए, कब, जबकि पावन हो जाए। इसलिए फिर उनको टाइटल देते हैं देवताओं का। टाइटल मिल जाता है देवता, क्योंकि उनमें दैवी गुण आ जाते हैं, दिव्य गुण आ जाते हैं। अभी मनुष्यों में दिव्य गुण नहीं है, आसुरी गुण है। दिव्य गुण थे, अभी नहीं है। तो इससे सिद्ध होता है कि पतित पावन है। जब मनुष्य पतित बनते हैं तो जरूर उनमें विकार ही होते हैं, अर्थात विकार ही होते हैं, विमाने विपरीत, कार्य माने कार्य करने वाले, विपरीत कार्य करने लग पड़ते हैं। जो कार्य करना चाहिए वो नहीं करते, जो अकर्तव्य है वही करते हैं। तो ये बिल्कुल सहज है समझना कि भारत निर्विकारी था और उस समय के मनुष्य मात्र को फिर निर्विकारी कहते थे। पीछे राजा ही तो जरूर होगी, राजाई के बगैर तो कभी कुछ हो नहीं सकता है। इसलिए कहा ही जाता है कि वॉइसलेस यानी निर्विकारी राज्य था, बस सावरेंटी थी। अभी मनुष्य की ऐसी पत्थर बुद्धि हो गई है जो इन बातों का चिंतन ही नहीं करते हैं कि निर्विकारी राज्य क्या होता है, यथा राजा तथा प्रजा क्या होती है, और विकारी राज्य क्या होता है, यथा राजा तथा प्रजा विकारी। मनुष्यों के ध्यान में ही नहीं आता है, जैसे कि वो कुछ जानते ही नहीं है कि देवी देवताओं का राज्य कैसे स्थापन हुआ, वो तो जानते ही नहीं है। अगर जान जाएं, तो फिर बाप को भी जान जाएं। बाप कैसे पतित पावन है, पर बाप को नहीं जानते हैं, तो कोई न कोई रख दिया ऐसे ही। फिर उनसे कोई सिद्ध नहीं होता है, किसको रख दिया है, है? अरे गीता का भगवान किसको रख दिया, कृष्ण को रख दिया। उस कृष्ण से तो सिद्ध नहीं होता है जिसको भगवान कहते हैं, कि कृष्ण ने आकर के कोई सूर्यवंशी राजधानी स्थापन की। वो सूर्यवंशी राजधानी का स्थापन होना कोई कृष्ण से साबित नहीं होता। क्यों क्यों नहीं साबित होता? अरे वो कौन सा वंशी था? शास्त्रों में कहा गया यदुवंशी था, यादव कुल का था। तो सूर्य से कोई सिद्ध नहीं होता है। बाप ने बैठ करके समझाई दिया है कि गीता में प्रलय कर दिए, क्योंकि बाकी जो 5 पांडव रचे बचे वो तो पहाड़ों पर गलने के लिए चले गए। तो गोया गीता से उन्होंने प्रलय दिखाई दिए, सिद्ध कर दी। अब जानते तो है नहीं, कवियों की भाषा क्या कहती है, भाव क्या है, क्या है भाव? पहाड़ों पर गलने चले गए। पहाड़ क्या है? है जिसको गीता में कहा है कूटस्थ, कूट माने पहाड़, स्थ माने स्थिर होना, ऊंची स्टेज में स्थिर हो गए। नीची स्टेज है तो देवहन, ऊंची स्टेज है तो देवहन से गल मरे। तो गोया उन्होंने प्रलय सिद्ध कर दी, नहीं तो है राजयोग का ज्ञान। यानी परमपिता परमात्मा ने आकर के पावन राजयोग सिखलाया, राजाई प्राप्त करने का सिखलाया। कैसी राजाई है? पहले क्या सिखलाया है? इंद्रियों पर राजाई करना सिखलाया कि विकारी राजी करना सिखलाया? तो राजाई प्राप्त करने के लिए सिखलाया भी जरूर भगवान ने आकर के, परंतु एक तो नाम बदल दिया और फिर राजा ही कैसे शुरू हुई? बोल्टा ज्ञान दे दिया। क्या उल्टा ज्ञान दे दिया? हिंसा के युद्ध कराया, प्रलय कराई दी। पीछे कहते हैं कि श्री कृष्ण पीपल के पत्ते पर आया, जब प्रलय हो गई सारे संसार में जल ही जल हो गया, ज्ञान जल से सारी दुनिया अप्लावित हो गई, तो पीपल के पत्ते पर कृष्ण आया, क्या मतलब हुआ है? ऐसा कौन सा पत्ता होता है जो आंधी के थपेड़ों से बहुत हिलता है और उसके मुकाबले एक ऐसा पत्ता होता है जो बहुत कम हिलता है? पीपल का पत्ता बहुत हिलता है, जिसको ब्रह्मदेव भी कहते हैं, और बरगद का पत्ता मोटी डंडी वाला होता है, छोटी डंडी होती है, बहुत कम हिलता है। तो देखो कहां की बात और कहां चली गई। माया के झकोरों से जो बहुत हिलता है वो कमजोर आत्मा होती है या पावरफुल आत्मा होती है? कमजोर आत्मा, थोड़ा भी माया का झकोरा आता है तो जोर से हिलने लगता है। तो रुद्रमाला में ऐसा कौन सा पत्ता है? रुद्रमाला का आखिरी मणका, जगत पिता के साथ बैठा हुआ, देखो कहां की बात है, कहां चली गई। पीपल के पत्ते पर आया, माना कृष्ण वाली आत्मा जगदम्बा में प्रवेश होती है। इन बातों को न समझने के कारण सब बिचारे हैं, कोई कुछ भी नहीं जानते, क्योंकि दिखलाते तो कृष्ण ही है, और कृष्ण तो है ही बैकुंठ का मालिक। सतयुग का मालिक तो जरूर कलयुग के पीछे फट से सतयुग आए ना, जैसे रात के पिछाड़ी फट से दिन आता है। तो उन विचारों ने ऐसे ही लिख दिया है, ये भावी ड्रामा की है, क्योंकि गाया भी जाता है बाप आकर के बरसा देने वाला है, ये भी तो समझते हैं कि बाप से बरसा मिलता है। कहते हैं गॉड फादर, और सभी तो कहते हैं गॉड फादर, तो फादर से जरूर वर्षा मिलता है, और फिर सिर्फ गॉड फादर नहीं कहते हैं, कहते हैं हेवनली गॉड फादर। क्या वर्षा देते हैं? हेवन का वर्षा देते हैं। अच्छा, हेवनली गॉड फादर कहना या यही समझना कि भगवान जरूर नई दुनिया स्थापन करेंगे, तो नई राजधानी भी स्थापन करनी पड़े, क्योंकि नई दुनिया में फौरन नई राजधानी, ढक से राजधानी स्थापन कर देते हैं। तो सतयुग के आदि में तो देखो राजधानी है, कलयुग के अंत में कहाँ है राजधानी? अभी कलयुग का अंत नहीं है, है या नहीं है? है तो दिल्ली राजधानी नहीं है, है? फिर यहाँ क्यों कह दिया? कलयुग के अंत में कहाँ है राजधानी? इसका मतलब अभी पूरा अंत नहीं हुआ है। पूरा अंत होगा तो दिल्ली क्या बन जाएगी? है, कब्रिस्तान बन जाएगी। क्योंकि अभी तुम संगम पर हो और बाप के सन्मुख हो। इस बाप को भक्ति मार्ग में याद करते आए हैं। अभी बच्चे समझ गए हैं कि बरोबर बाप कल्प 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 के संगम पर आए करके फिर हम बच्चों को जो उनके बच्चे बनते हैं और ब्राह्मण कहलाते हैं। क्योंकि बच्चों को समझाया है अच्छी तरह से कि परमपिता परमात्मा इस त्रिमूर्ति अर्थात ब्रह्मा विष्णु शंकर द्वारा ये कर्तव्य कराते हैं। अभी ये चित्र भारत में ही है और ये भारत में ही समझने, बाप भी भारत में ही आकर के समझाते हैं। भी क्यों लगा दिया? बाप आकर के भारत में चित्र बनाते हैं या समझाते हैं? हैं? समझाते हैं। पहले माँ आती है कि बाप आते हैं? पहले तो बच्चों के सामने माँ आती है लेकिन माँ समझाती नहीं है, क्योंकि बाप ने ही समझाया है कि दोनों का जन्म परमपिता परमात्मा जिसको राम भी कहते हैं, और फिर जो दुश्मन है जो फिर तुम्हारे से जीत पहन लेते हैं, तुम्हारा राज छीन लेते हैं, वो रावण का भी जन्म यही है। बाप ने समझाया है कि दोनों का जन्म परमपिता परमात्मा जिसको राम भी कहते हैं। दोनों कौन? एक परमपिता और परमात्मा। जिसको राम भी कहते हैं, और फिर राम के मुकाबले जो दुश्मन है, जो फिर तुम्हारे से जीत पहन लेते हैं, राज छीन लेते हैं, वो रावण का भी जन्म यही है। कहाँ है? भारत में। यज्ञ के आदि में कुछ ऐसा हुआ? है? अरे यज्ञ के आदि में क्या हुआ? है? अरे सेवक राम की कोई कहानी है जिसका नाम निशान गुण कर देते हैं? है? पहले यज्ञ में किसका राज्य था, फिर बाद में क्या हुआ, किसके हाथ में चला गया? रावण है। है? अभी अहमदाबाद में किसका राज्य है? ब्राह्मणों की दुनिया में है? आवाज सूट हो रही है? तो जो दुश्मन है वो तुम्हारे पर जीत पहन लेते हैं, राज छीन लेते हैं, तो वो रावण का भी जन्म यही है। कहाँ है? भारत में। भारत में पूरब में है या पश्चिम में? कहाँ जन्म है? अरे पूरब में रावण का जन्म है। पूरब में सूर्य उदय होता है या सूर्यास्त होता है? अभी तुम्हारी बुद्धि में अच्छी तरह से है कि किसको राम कहा जाता है और किसको रावण कहा जाता है। ऋग्वेद की एक ऋचा में आया है, रावण हो ब्रह्मा, राम ही सो रावण बनता है, रावण ही सो फिर क्या बनता है, राम बनता है। फर्क क्या है? राम और रावण में विशेष फर्क क्या है? है राम की एक मत एक सिर, रावण ब्रह्मा को अनेक सिर देते हैं। जिसको रावण कहा जाता है अभी वो मनुष्य तो बंदर बुद्धि है, आसुरी बुद्धि है, पतित बुद्धि है। पतित बुद्धि तो लायक नहीं है देवता कहलाने के, या ब्राह्मण कहलाने के भी लायक नहीं है, क्योंकि ब्राह्मणों के लिए भी तो गाया हुआ है कि ब्रह्मा के मुखवंशावली है। यहाँ भी क्यों लगा दिया है? ब्रह्मा मुखवंशावली जो ब्राह्मण है वो एक कुरी के हैं या अनेकों कुरियों के हैं? नौ कुरी तो गाय हुई है, दसवीं कुरी भी है नास्तिकों की जो गाय हुई नहीं है, तो कितने मुख हुए? तो ऐसे नहीं कोई समझेंगे कि ब्राह्मण कोई पतित थे हैं? कोई समझते हैं कि रावण पतित था ब्राह्मण था? ब्राह्मण था या नहीं था? ब्राह्मण तो था। जैसे ब्राह्मण पावन बनते हैं तो फिर ब्राह्मण ही देवता बनते हैं। कितने कला के, कितने कला के देवता बनते हैं? 16 कला संपूर्ण। सभी कुरियों के 16 कला संपूर्ण बनते हैं? सभी कुरियों के नहीं बनते, क्योंकि जो ब्राह्मण ब्रह्मा मुख वंशावली है इनको भ्रष्टाचारी नहीं कहेंगे, कौन से ब्रह्मा मुख वंशावली, सूर्यवंशी और वंशों के 6:66 की वाणी का दूसरा पेज, वो भ्रष्टाचार से पैदा नहीं हुए। कौन? सूर्यवंशी ब्राह्मण भ्रष्टाचार से पैदा नहीं हुए, भ्रष्ट इंद्रियों के आचरण से पैदा नहीं हुए का मतलब क्या हुआ है? माना इंद्रियां कोई भी हो अगर व्यभिचारी बनती है तो भ्रष्ट आचरण है। जो ब्राह्मण है वो तो भ्रष्टाचार से पैदा नहीं होते, आंखों की शैतानी से पैदा नहीं होते, नहीं तो बहुत है ऐसे जो ज्ञान लेने के बहाने आते हैं और शैतानी करने लग पड़ते हैं और खुदा न खास्ता ज्ञान में चल भी पड़े तो गिरती कला के ब्राह्मण बनेंगे, नीची कुरी के बनेंगे या ऊंची कुरी के ब्राह्मण बनेंगे? बाप ने समझाया है ये मनुष्य जो भिक्ष से पैदा होते हैं उनको भ्रष्टाचारी कहा जाता है। तो विचारी ही भिक्ष है, इसलिए सिखों में क्या मान्यता है? एक नारी सदा ब्रह्मचारी। राम का अब क्या विरुद्ध कहा गया? क्या मर्यादा थी? मर्यादा पुरुषोत्तम माना। उनकी मर्यादा थी ඒක නරි. પરંતુ તુમકો તો પરમપિતા પરમાત્મા ને બ્રહ્મા કે મુખ સે અપના બનાયા હૈ. અડાપ્ટ કિયા હૈ. કે તુમકો અભી કોઈ ભ્રષ્ટાચારી જન્મ નહીં કહેંગે. કબ અપનાયા? और कौन से ब्रह्मा ने बना अपनाया तुमको? है? क्योंकि ब्रह्मा तो अनेकों के नाम है. एक का नाम ब्रह्मा है कि अनेकों के नाम ब्रह्मा है? अनेकों के नाम ब्रह्मा है. तो ब्रह्मा भी नंबरवार होंगे या एक जैसे होंगे? कोई अडॉप्ट किया है? कब अडॉप्ट किया है? इस जन्म में ही अडॉप्ट किया है या पिछले जन्म में भी अडॉप्ट किया? तो तुमको अभी कोई भ्रष्टाचारी जन्म नहीं कहेंगे. हाँ, तुम्हारा पहला जन्म भ्रष्टाचारी जरूर है. अभी तुम्हारा भ्रष्टाचारी जन्म नहीं कहेंगे. अभी क्यों नहीं कहेंगे? है? पहले ज्ञान नहीं था और अभी? अभी तो पूरा ज्ञान है. ये जो तुम्हारा संगम का जन्म है उसको भ्रष्टाचारी नहीं कहेंगे. क्योंकि ब्रह्मा की मुखवंशावली हो तो ऐसे कहेंगे कि बरोबर ये पतित हैं. परंतु इस समय में जो अडॉप्ट किए हुए हैं वो ब्रह्मा के मुख कमल द्वारा. तो देखो, तुम्हारा जो भ्रष्टाचारी जन्म था वो जैसे के ट्रांसफर होता है श्रेष्ठाचारी में. क्योंकि ब्रह्मा की मुखवंशावली हो जाती हो तो फिर तुम ब्राह्मणों को कोई ऐसे नहीं कहेंगे कि तुम कोई भिख से पैदा हुए हो. तुम पैदा तो हुए ये भ्रष्टाचारी अक्षर तुम्हारे से निकल जाता है फट से. मैंने तुम ज्ञान से पैदा हुए या इंद्रियों के संक्रमण से पैदा हुए? ज्ञान से पैदा हुए तो फट से तुम्हारा वो भ्रष्टाचारी अक्षर निकल जाता है. फिर तुमको बैठ करके लायक बनाते हैं. ब्राह्मणों को लायक बनाना माना ब्राह्मण से देवता बनाना. तो कहां के लिए बनाते हैं? सतयुग की बादशाही लेने के लिए. तो वास्तव में तुम्हारा ये पहला मुखवंशावली जन्म बहुत ऊंचे. परमपिता परमात्मा पहले ही आकर के ब्रह्मा द्वारा मुखवंशावली रचते हैं. तो फिर मुखवंशावली को भ्रष्टाचारी नहीं कहेंगे. मुखवंशावली को भ्रष्टाचारी नहीं कहेंगे. मन मुख से जो ज्ञान सुन करके पैदा होते हैं उनको भ्रष्टाचारी नहीं कहेंगे। वो जो भ्रष्टाचार से पैदा होते हैं उनको इंद्रियों के भ्रष्टाचार से जन्म लेना वाला कहा जाता है, विविचार से जन्म लेने वाला कहा जाता है। तो देखो तुम्हारे में फर्क हो गया, तुम ब्राह्मण बन गए, फिर भी अगर तुम फिर जा करके कोई भ्रष्टाचार करो तो फिर तुमको भ्रष्टाचारी कहा जाता है। अभी तो तुमको भ्रष्टाचार करना ही नहीं है, जो ब्राह्मण होंगे कच्चे या पक्के, जो पक्के ब्राह्मण होंगे वो तो भ्रष्टाचार करेंगे ही नहीं। ओम शांति।